الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی جللہ وعلا آلک و صحابک یا نور اللہ منشن کے ناظرین پروگرام ہے اللہ کی دوست اللہ کے پیارے بندے انشاءاللہ العزیز آج بھی کچھ ایسے اوصاف آج بھی کچھ ایسے اعمال ذکر کیا جائیں گے کہ جن کی وجہ سے آدمی اللہ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے اور جب انسان اللہ کا پیارا بندہ بن جائے رب اس سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں مشغول ہو جائے تو یہ بہت بڑی سعادتوں والی خوش نصیبی والی بات ہے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص صبحوں کے وقت تین بار شام کے وقت تین بار میری ذات پر درود بھیجے اللہ اس کے صبحوں اور شام کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں صبح شام درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں ناظرین، جب آپ کسی ایسی روایت میں اس طرح کی فضیلت کو سنتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین گناہ صغیرہ ان کی بدولت معاف فرماتا ہے، ایسی خطائیں جو انسان سے سرزد ہو جائیں ان کو معاف فرماتا ہے۔ کچھ ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، لیکن اگر سچی توبہ انسان کرے تو اللہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ توبہ ایسی نفیس شے ہے، اگر کوئی آدمی کفر اور شرک سے بھی توبہ کرتا ہے اللہ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے، اور وہ کفر شرک سے جو توبہ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے رب اس کے کفر اور شرک کو معاف کرتا ہے، پچھلے ساری غلطیوں گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی مسلمان گناہگار ہے جب وہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور پھر نہ صرف گناہوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ ایسے سچے لوگوں کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب عز و جل نے جگہ جگہ ایمان والے اور ایمان والوں کے اعمال ان کو بیان فرمایا۔ کئی مقامات پر آپ کو یہی آیتیں ملیں گی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اچھا، پھر آگے ان کا انعام بھی ذکر کیا ہوتا ہے، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير۔ کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ تو ایمان اور عمل صالح ان کی پھر جزا کو جب بیان کیا جائے تو جنتوں کو اور وہ باغات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اچھا، جنت یہ باغ کو کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں آپ جتنا بھی کئی مقامات پہ آپ پڑھتے ہیں تو وہاں یہی ہے، جنات یعنی کئی باغات۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے جنتیں آٹھ ہیں اور ان کے نام یہ ہیں، نمبر ایک دار الجلال، نمبر دو دار القرار، نمبر تین دار السلام، نمبر چار جنت عدن، نمبر پانچ جنت مأوی، نمبر 6 جنت خلد اور نمبر 7 جنت فردوس، نمبر 8 جنت نعیم، یہ 8 جنتیں ہیں۔ اس لیے ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے ان کے جو انعامات اللہ نے بیان فرمایا تو جنات جنات یعنی ان کو بہت جنتیں ہیں، بہت انعامات ہیں۔ اور پھر یہ ساری جنتیں سارے انعامات یہ اپنی جگہ، آگے ارشاد کیا فرمایا، ایک اور آیت مبارکہ میں وہ پہلے ذکر کر دوں، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْن وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ ارشاد فرمایا اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے، وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور فرمایا عدن کے باغات میں پاکیزہ رہائشوں کا وعدہ ہے، یعنی ان کے جو محلات ہوں گے، ان کے جو گھر ہوں گے وہ جنت عدن، یہ اور عدن یہ بھی جنت کا ایک نام ہے، اس کے جو باغات ہوں گے اس کے اندر ایسے لوگوں کے وہ گھر ہوں گے۔ اور فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یہی بہت بڑی کامیابی۔ جنت کے انعامات اور جنت کے اندر جو اللہ نے محلات، جنت میں جو نہریں، جنت میں باغات، یہ ساری چیزیں تیار کی گئی، اور ارشاد فرمایا یہ نعمتیں اپنی جگہ، یہ انعامات اپنی جگہ۔ فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑا انعام، کہ جس بندے سے رب ہی راضی ہو جائے، رب جس بندے سے راضی ہو جائے تو پھر اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ رب مالک ہے، خالق کائنات ہے، وہ ایک ہی ہے، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کا اس جیسا کوئی نہیں ہے، جو کسی اور کو معاذ اللہ اس کی ذات اور صفات میں اس جیسا مانے وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، شرک کرے گا۔ توحید کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کو ذات اور صفات کے اعتبار سے ایک جاننا، واحد یکتا، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کے حکم میں، نہ اس کے اسماء میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے حکم میں، نہ اس کے احکام میں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے۔ قل ھو اللہ احد، اے محبوب آپ فرماؤ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا نہ اس کی کوئی اولادیں، ولم یکن لہ کفواً احد، اور نہ اس کی کوئی برابری کا، اس کا کوئی ہمسر نہیں نہ اس کی کوئی برابری کا۔ تو جو آدمی اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، رب کی رضا جسے مل جائے اسے سب کچھ مل گیا، اسے سب کچھ مل جائے گا۔ تو اللہ کی رضا حاصل ہونا اور ایسے اعمال کرنا کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، یہ اللہ والوں کا طریقہ اور اللہ والوں کا انداز ہوتا ہے۔ جنتیں ساری عظیم جنتیں ہیں، اور وہ باغات اور وہ جنت کے انعامات، چاہے جنت فردوس ہو، نبی پاک علیہ السلام نے جنت کی بھی ہمیں بہت سی ترغیبات ارشاد فرمائی، اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے بھی ارشاد فرمائے، سابقو الی مغفرۃ من ربکم و جنت، ارشاد فرمایا اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور اس جنت کی طرف سبقت لے کر جاؤ، دوڑو اس کی طرف، کوشش کرو، اعمال ایسے کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے، उसकी एक ईंट सफेद मोती की है, एक सुर्ख याकूत की, एक सब्ज जबरजद की। मुश्क का गारा है, उसकी घास जाफरान की है, मोती की कंकरियां और अंबर की मट्टी है। और फरमा अपने दस्ते कुदरत से इसे पैदा फरमाया है, अपनी शान के लाए। फिर फरमाया एक और हदीस में कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत आदन को पैदा फरमाया है तो उसमें वो चीजें पैदा फरमाई जिन्हें ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी इंसान के दिल में ऐसा ख्याल आया। अल्लाह ने जन्नत आदन से फरमाया कि मुझसे कलाम कर, तो जन्नत आदन ने क्या कलाम किया? कद अफलहल मोमिनून, बेशक मोमिन कामयाब हो गए, मोमिन कामयाब हो गए। वरिद्वानु मिनल्लाह अकबर, ये कलिमात जो इरशाद फरमाए गए कि मोमिनों के लिए जन्नत के इनामात तो हैं और अल्लाह की रिजा सबसे बड़ा इनाम। कि जब अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दिया तो अब अल्लाह उनसे राजी है, तो ये अल्लाह की रिजा का उन्हें मिल जाना ये सबसे बड़ा इनाम। क़यामत के दिन अल्लाह अपना दीदार भी कराएगा। जी जी, अहले जन्नत को बुलाया जाएगा कि आओ, एक बाग के अंदर बुलाया जाएगा और फिर वहां पर कहा कि मुख्तलिफ मिंबर, कुर्सियां, सोफे जिसे कहा जाता है, लेकिन वो जन्नती सारी इनामात होंगे। उस अंदाज से वो कुर्सियां होंगी, वो मिंबर बिछे हुए होंगे। और फरमाए हर कोई आदमी बैठेगा और हर एक का देखना दूसरे के देखने में कोई हायल नहीं होगा, यानी ऐसा नहीं कि इतना रश भीड़ कहीं लगे कि पीछे वाला आगे देख ही ना सके, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जब दीदार होगा तो ऐसे अहले जन्नत बैठेंगे और रब अपना दीदार कराएगा, तो यह सबसे बड़ा इनाम जन्नतियों को मिलेगा। अहले जन्नत जन्नत में पहुंचे ही उस सबब से कि रब उनसे राजी हो गया। तो इसलिए कुरान ने फरमाया वरिद्वानु मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रिजा बहुत बड़ा अमल है, रब को राजी करो। रब को राजी करना यह बहुत बड़ा अमल है और यह अल्लाह वालों का तरीका रहा है। रब की रिजा किस में है? वो उस अमल के मुलतजी रहते हैं, वो उस अमल को तलाश करते कि रब की रिजा किसके अंदर है। हमें नहीं पता, इसीलिए उलमा ने लिखा कि भाई छोटे से छोटे अमल को भी, यानी नेकी को भी छोटा कहकर इग्नोर ना करो, छोड़ो नहीं बल्कि उसे करो, हो सकता है रब की रिजा इसी में नसीब हो जाए। और छोटे से छोटे गुनाह को भी इसलिए ना करो, हो सकता है इसी वजह से अल्लाह नाराज हो जाए। और रब नाराज हो गया किसी बंदे से तो ये उसके लिए तबाही है, बर्बादी है, हलाकत है। तो अल्लाह को राजी करना, रब की रजा चाहना, ये है सब। और जब रब राजी होगा तो फिर सब कुछ उसे मिल जाएगा। रब राजी तो सब राजी। और आज दुनिया के अंदर भी अगर बिलफर्ज, क्योंकि ये हदीसों में तो ये बयान फरमाया गया ना कि जो दुनिया का तालिब हुआ उसने अपनी आखरत को नुकसान पहुंचाया, और जो आखरत का तालिब होता है वो अपनी दुनिया को नुकसान पहुंचाता है। कुछ तो नुकसान होता ही है ना, लेकिन इंसान जब जेहन में रख लेता है रब की रजा को, रब के राजी करने को, कि मैंने अपने रब को राजी करना है। सहाबा की शान देखिए कि कुरान में जगह जगह अल्लाह फरमा रहा है रदियल्लाहु अन्हुम वरदु अन्ह, अल्लाह इनसे राजी, ये अल्लाह से राजी। लक़द रदियल्लाहु अनिल मोमिनीन, कहीं अल्लाह उन सहाबा की तारीफ फरमाता है और फरमाता है अल्लाह इनसे राजी हुआ उन मोमिनों से। ए महबूब, जिन्होंने आपसे बैत की अल्लाह उनसे राजी। कहीं ये फरमाता है। तो रब की रजा जिस आदमी को मिल जाए उसे सब कुछ मिल गया। और अल्लाह को राजी करने की अलामत अगर कोई इंसान के वे कौन सी अलामत है कि पता चले हमें रब राजी है। उलमा ने लिखा कि उसकी एक अलामत यह है कि अल्लाह के नेक बंदे इससे राजी हों, वो इससे राजी हों अल्लाह के नेक बंदे, तो ये एक अलामत है कि जब नेक अल्लाह का बंदा इससे राजी है तो फिर इसमें कुछ ऐसे अमाल हैं कि जिसकी वजह से ये अल्लाह वाला इससे राजी हुआ तो अल्लाह भी इससे राजी है, अल्लाह भी राजी। और उससे फिर क्या होता है, उससे नेक अमाल की तौफीक मिले, नेक अमाल करने में उसकी मदद हो, ये है रब की रजा की अलामत। कोई ये ना समझे कि मैं नमाजें नहीं पढ़ रहा या मैं नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, वो अपनी बदनसीबी पे बस वक्त उसे यूं भी अफसोस करना चाहिए, रोना चाहिए कि मैं कबूल नहीं किया जा रहा उस बारगाह में, मुझे बुलाया ही नहीं जा रहा। बहुत बहुत बहाने हमने एक तरह के बना लिए, कभी होता था टाइम नहीं, कभी होता था ये नहीं, कभी होता था वो नहीं। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ, जब घरों में बैठ गए, सब कुछ फरागते हैं लेकिन इसके बावजूद भी नमाज के लिए वक्त ना मिला या नमाज ना पढ़ी, तो फिर ये जान लें कि ये तौफीक इलाही नहीं मिली। अल्लाह की बारगाह में फिर तौबा करें, रब से माफी मांगें, या अल्लाह में अपनी बारगाह में आने के लिए कबूल फरमा ले। जब उसे नेक अमाल की तौफीक मिल जाती है, ऐसे से अमाल वो करता है कि फिर अल्लाह उससे राजी होता है, रब की रजा उसे मिल जाती है। रब की रजा एक ये भी कि इंसान अपनी तकदीर पर राजी हो जाए, जो कुछ अल्लाह ने इसके मुकद्दर में फरमाया इसे मिल गया, जो मिलने वाला है जो कुछ मुकद्दर में वो भी इसे मिलेगा, लेकिन अपने वक्त पर, उससे पहले नहीं। और जो मिलना है रिवायत में बयान किया, फिर सारी मखलूक लग जाए उसको निकालने के लिए कि ना मिल सके, वो उसको मिलकर रहेगा। और जो मिलना नहीं है, सारे लोग अगर देना चाहेंगे तो नहीं दे सकेंगे। पर इतना तो आपका भी इत्तेफाक होगा, मेरा भी इत्तेफाक है, कोई बड़ा सा बड़ा आदमी, अमीर कबीर आदमी भी बीमार हो जाए, कहे मैं दुनिया के डॉक्टरों को खरीद सकता हूं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों को खरीद सकता हूं, तो हम यही कहेंगे आप डॉक्टर खरीद सकते हो, हॉस्पिटल खरीद सकते हो, लेकिन शिफा नहीं खरीद सकते। शिफा जब अल्लाह चाहेगा तो ही शिफा मिले। रब की रजा की एक अलामत यह कि तकदीर पर राजी हो जाए। قل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون। अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया कि महबूब फरमाओ में हरगिज नहीं पहुंचेगा मगर वो जो अल्लाह ने हमारे लिए मुकद्दर फरमा दिया। हुआ मौलाना, वो हमारा मौला है, वो हमारा रब है, वो मददगार है। वाला अल्लाह फलियतवक्कल मोमिनून, और अल्लाह पर ही मोमिनों को तवक्कुल करना चाहिए, अल्लाह पर ही मोमिनों को तवक्कुल करना चाहिए। तो रब की उस तकदीर पर राजी हो जाए, अपनी जिंदगी पर राजी हो जाए, रब ने जो आकामात दिए हैं उस पर राजी हो जाए। हदीस में फरमाया जो अल्लाह के रब होने पर और इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राजी हो जाए, फरमाया इसे ईमान का जायका मिलेगा, ईमान का जायका इसे नसीब होगा जो शख्स ये पा लेता है। अल्लाह अज़्ज़वजल के रब होने पर आदमी राजी हो, ये कैसे पता चले? उलमा ने लिखा कि फिर अल्लाह के बताए हुए आकामात पर वो राजी हो जाए, इस्लाम के बताए हुए आकामात पर राजी हो जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राजी होने का मतलब ये है कि जो कुछ आप लाए हैं, जो बयान किया है, वो उस पर राजी हो जाए। तो ये गोया कि इसने अल्लाह रसूल को राजी कर दिया, अपने दीन पर भी राजी हो जाए। ये कहे हाँ भाई नहीं 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 मैं तो अल्लाह पर राजी हूं, सब कुछ है। अच्छा जब बात आती कोई दीनी मामले में, कहीं ज़कात का मामला हो तो पैसा जाता है भाई, अब वो थोड़ा सा वो यार। तो ये भी अल्लाह का हुक्म था, निकालो इसको। अल्लाह के आकामात पर राजी हो जाए, अल्लाह के नबी पर राजी हो जाए, इस्लाम के दीन होने पर राजी हो जाए कि जो इस्लाम कह रहा है वो मैंने उस पर अमल करना है, ये है रिजा। इसलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे 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 दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे दाखिल हो, अपनी मनपसंद के अकामत पर अमल करना, बकियों को छोड़ देना, तो ये फिर आपने अपनी नफ्स की, अपनी ख्वाहिश की, अपने नफ्स की आपने इत्तिबा की है, इस्लाम की इत्तिबा इसमें ना हुई। एक आदमी को ज़कात देना बड़ा अच्छा लगता है, ज़कात देता है, पैसा खर्च करता है, इधर उधर करता है, ठीक है भाई, लेकिन नमाज उस पर गिरा गुजरती है और कोई अमल उस पर गिरा गुजरता है। अच्छा, एक आदमी को खाना खिलाना बड़ा अच्छा लगता है, लोग को खाना खिलाता है, ठीक है, अच्छा अमल है, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा ही है इसमें, बल्कि आदमी जो खिलाता है रब तो ऐसे खिलाने वालों की तारीफें फरमाता है। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ दूसरे आमाल के अंदर फराइज ये मामलात आप तर कर देते हैं, आप छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं माजल्ला इस तरह का, फिर आदत अच्छी नहीं। तो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ कि जिस इस्लामी हुक्म पर, चाहे वो मेरे मुआफिक हो या खिलाफ हो, फिर उसमें चू चुरा ना की जाए, फिर उसमें कुछ बोला ना जाए। ये है अल्लाह की रजा उन बंदों को मिल जाए और रब ही राजी हो जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह के एक नबी ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह मुझे इस रूह जमीन पर सबसे बड़ा इबादत गुजार दिखा दे, मैं वो देखना चाहता हूं। तो अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेजा, जिब्रील लेकर गए ऐसे शख्स के पास, लेकर गए कि जिसकी आंखें नहीं है, हाथ कटे हुए, लूला लंगड़ा है, ऐसे शख्स के पास सबसे बड़ा इबादत गुजार, अल्लाह अकबर। आपने कहा मैंने तो इबादत गुजार का कहा था, यानी वो कि जो अल्लाह की बारगाह में सजदों में हो, इबादत कर रहा हूं, हम भी ऐसे को इबादत गुजार समझते हैं। जब हजरत जिब्रील से पूछा गया तो उन्होंने कहा इससे पहले इसकी हालत वही थी, इबादत गुजार ही था, लेकिन फिर ये हुआ जब उस आदमी से कहा गया कि तुम्हारे बारे में आओ मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में कि तुम्हारी आंखें आ जाएं, ये हाथ पांव जो कटे हुए हैं ये सब सही हो जाए। नहीं, मेरा रब इस हालत में अगर मुझसे राजी है तो ये हालत ही मुझे पसंद है, अल्लाह अकबर, फिर ये हालत ही पसंद है। ये सोना मेरे दुखा च राजी ते मैं सुखा नु चुल्ले पावा हूं, कि मेरा रब अगर मेरे दुखों में वो राजी है, रब राजी है, तो फिर मुझे सुख नहीं चाहिए, ये सुख मैं किसी तंदूर और चूल्हे में फेंक दूंगा। और वो उसी पर साबिर शाकिर है। अल्लाह के नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे कि वाकई ये बहुत बड़ा इबादत गुजार है, ये बहुत बड़ा इबादत। उमद शहर के नाजरीन, फिर अल्लाह का, अल्लाह की मोहब्बतें देखें ऐसे अफराद के साथ जो बीमार हो, किसी परेशानी में हो, कुछ भी ऐसे, एक मोमिन को कोई भी तकलीफ पहुंचती है रब उस पर उसको अजर सवाब देता है, ताकि कांटा भी चुभ जाए रब उसे सवाब अता फरमाता है। और बीमार जो साबिर शाकिर हो, इनके लिए बयान किया जाता है अल्लाह अपने फरिश्तों को नादिल फरमाता है, बीमार के पास जाओ और जरा देखो ये आने वालों को क्या कहता है, आने वालों को ये क्या कहता है, इधर देखो तो सही, जाके देखो इसको, अगर वो शिकवे शिकायत करता है, अगर वो कुछ ऐसी बातें करता है, अल्लाह अकबर, उससे नाराज होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन कि ये इंसान जिसको इतना कुछ पहले दिया था, अब थोड़ी तकलीफ पहुंची है तो ये शिकवों पर आ गया, रब नाराज होता है उससे नाराज। तो रब अज़्ज़ा वजल ऐसे लोगों के पास अपने फरिश्तों को भेजता है, देखो ये क्या कहता है, अच्छा अच्छे कलिमात कहता है, अल्लाह उसके गुनाह भी माफ फरमाता है और फिर साथ साथ क्या फरमाता है, उसके गुनाहों को बख्शता भी है और साथ साथ वो नेकियां जो तंदरुस्ती में वो कर रहा होता है, अल्लाह बीमारी की हालत में भी उसे अजर व सवाब अता फरमा रहा होता है। तो अल्लाह को राजी करना है तो फिर अल्लाह के शुक्रगुजार बंदा बनना पड़ेगा। सूफिया ने क्या खूब बात की है, फरमाते हैं अल्लाह वाला कभी अल्लाह वाला बन ही नहीं सकता। कब? कहा जब वो बहुत छोटी नेमत पर बहुत बड़ा शुक्र बजाना लाए और बड़ी से बड़ी मुसीबत पर सब्र ना कर ले। वो बन ही नहीं सकता इस मर्तबे पर, आ ही नहीं सकता। यानी अल्लाह वाला बनना है, अल्लाह का दोस्त बनना है तो ये चीजें के शुक्र बजा लाए, छोटी सी छोटी नेमत पर बहुत बड़ा शुक्र। बड़ी नेमत की बात नहीं हो रही, छोटी नेमत पर शुक्र बड़ा। और जब दूसरी तरफ आए तो वहां ये फरमाया गया, मुसीबत बहुत बड़ी और सब्र उसका बहुत बड़ा, अज्म के साथ सब्र के साथ ये अल्लाह वाला और अल्लाह को राजी करने वाला अमल है। वो आदमी जिसके साथ कोई जुल्म किया जाता है और वो खुद भी जालिम फिर नहीं बन जाता कि उसका जवाब जुल्म से दे, नहीं, वो माफी के साथ दे। जालिमों के लिए ये गुंजाइश नहीं पैदा कर रहा कि वो कहें कि ठीक है जो हम मर्जी करें वो माफ कर दे, ना ना, आप भी तो अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह को मानने वाले हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जालिम मजलूम दोनों की मदद करो। अर्ज की गई मजलूम की समझ में आ गई जालिम की कैसे मदद करें, फरमाया जालिम को उसके जुल्म से रोको, यही उसकी मदद है। किसी को किसी बुराई से रोको, ये मदद है उसकी। तो जो जुल्म हो किसी पर वो उसे माफ करे, जो महरूम कर रहा है वो उसे अता करे। जी अमल वो हैं कि जो अल्लाह को राजी करने वाले अमल। आज दुनिया के अंदर किसी से बदला लेने की ताकत होने के बावजूद उससे दर गुजर करता है। वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह पसंद फरमाता है इनको। कौन से लोग हैं? अपने गुस्से को पी जाने वाले, लोगों को माफ करने वाले, दर गुजर करने वाले। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह पसंद फरमाता है ऐसे नेकोकारों को। अल्लाह करीम मुझे आपको ऐसे अमाल बजा लाने की तौफीक अता फरमाए कि हमारा शुमार अल्लाह के प्यारे बंदों में, अल्लाह के दोस्तों में हो जाए और रब की रिजा हमें नसीब हो जाए, रब की रिजा हमें नसीब हो जाए और अल्लाह की रिजा के लिए हम अमल करने वाले बन जाए। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अल्लाह अल्लाह किए जा।